ये आकाशवाणी है, अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी प्रभुत्व का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन की परिकल्पना नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में की गई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस जैसे ठिकानों पर उच्च प्रभावकारी हवाई अभियान चलाए। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस और भारतीय खुफिया एजेंसियों की प्रामाणिक जानकारी का प्रमाण है। अहमदाबाद नगर निगम की 15 अरब रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत की रक्षा प्रणाली की मजबूती प्रदर्शित की, बल्कि आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आकाश आनंद देश में बसपा के आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बसपा ने यह भी घोषणा की है कि वे आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर तीनों देशों के नेताओं से मिलेंगे और द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर अपने समकक्षों के साथ चर्चा भी करेंगे। यह भारत के कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर प्रमुख यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल वेटिकन सिटी में सर्वोच्च पोप लियो 14वें के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उनके साथ नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यान थुंगो पैटर्न भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पोप लियो 14वें से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में पोप लियो 14वें को सर्वोच्च पोप चुने जाने पर बधाई दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीआर गवई ने कल मुंबई में चैत्य भूमि का दौरा किया और बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद यह उनकी पहली मुंबई यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने डॉ अंबेडकर स्मारक पर प्रार्थना की और डॉ अंबेडकर के बनाए संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और एकता के मूल्यों को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। मौसम विभाग ने आज से 24 मई तक कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा केरल और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज और बिजली के साथ तेज वर्षा की संभावना है। आज से 22 मई तक पश्चिम राजस्थान, जम्मू कश्मीर में लू चलने की संभावना है और ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की सलामी जोड़ी साई सुदर्शन और कप्तान सुमन गिल ने नाबाद रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले कल के एक अन्य मैच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।